मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 2 अगस्त 2016 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि एकेडमी अगले साल फरवरी और मार्च में 15 दिन की क्लासेस ऑर्गेनाइज करने जा रही है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी हैं। तो उन क्लासेस के लिए दो नौजवान साथियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनके नाम हैं वरुण कुमार रांची से और आनंद राज मुजफ्फरपुर से। तो वरुण और आनंद, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के बाद अब अवसर है बधाई देने का, तो मैं आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देता हूं सुशांत चौहान को, जो आगरा के रहने वाले हैं। उन्होंने ईमेल से सूचित किया है कि अभी एसएससी के जो एग्जाम हुए थे उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है और इसके लिए उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस के प्रति आभार व्यक्त किया है। तो सुशांत, इसके लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत आपको बधाई और इससे भी बेहतर सफलताएं आपको जीवन में आगे मिलें, इसके लिए हम सबकी शुभ कामनाएं भी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में और लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत कल मैं जेन्यूननेस की बात कर रहा था। आपको ध्यान होगा कि शान की हंसी में एक जेन्यूननेस है, यानी कि उसकी हंसी जेन्यून मालूम पड़ती है, आप इसे यूं कह सकते हैं। और मित्रों, फिर मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जो जेन्यूननेस है ये केवल हंसी से ही जुड़ी हुई बात नहीं है या दो चार मुद्दों से ही इसका केवल संबंध नहीं है, बल्कि सच पूछे तो इसका संबंध हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों से है, खासकर आपके सिविल सर्विस की तैयारी से तो है ही। मित्रों, मैं जितने भी स्टूडेंट्स से मिलता हूं और खासकर जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, सब का जो वाक्य होता है वो बड़ा मजेदार होता है। और वाक्य मालूम है क्या होता है? वो होता है कि सर, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी, मैं यहां तक कि मरने को तैयार हूं। ये उनके वाक्य होते हैं, लेकिन मैं इसे हासिल करना चाहता हूं। उनको ऐसा लगता है कि इस वाक्य के जरिए उन्होंने सिविल सर्विस के प्रति अपनी जेन्यूननेस को एक्सप्रेस कर दिया है और उन्हें महसूस होने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो तैयारी करने के बारे में जेन्यून हूं। दूसरे क्षेत्रों में भी यही होता है। तो फ्रेंड्स, चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप किसी के एम्प्लॉई हो, आपको यही लगता है कि मैं तो इतना कर रहा हूं, सामने वाला खुश क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, अब इससे ज्यादा मैं और क्या करूं, जान दे दूं। लोग नाराज होकर के फ्रस्ट्रेशन में ये तक कहते हैं। दोस्तों, लेकिन आप जो जेन्यूननेस का जो मनोविज्ञान है उसकी जो गहराई है उसको पकड़ने से चूक जाते हैं। आपको लगता है कि इच्छा कर लेना जेन्यूननेस है, कह देना जेन्यूननेस है, दो चार पांच दस दिन के लिए आपाधापी कर लेना, उसमें रात दिन लग जाना, अपने को डुबो देना जेन्यूननेस है। इसका जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान को हम मिस कर देते हैं और बस वही जेन्यूननेस खत्म हो जाती है। सुल्तान में, फिल्म सुल्तान में उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए तो आपको पता लगेगा, चाहे वो उसके प्रेम की जेन्यूननेस हो, चाहे पहलवानी के प्रति उसकी जेन्यूननेस हो, चाहे फिर रेसलिंग के प्रति उसकी जेन्यूननेस हो, उसको आप ढूंढिए, आपको वो मिलेगी। मित्रों, इसी संदर्भ में मैं एक बड़े खूबसूरत एग्जाम्पल का उल्लेख यहां करना चाहूंगा। कल मेरे पास जो मेल आते हैं उसमें एक बड़ा बड़ा खूबसूरत मेल आया। उस मेल में मैं, दोस्तों, ये था, आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को वीकली क्वेश्चन दिया जाता है और आप लोगों के फिर रिक्वेस्ट पर मैंने वो वीकली क्वेश्चंस के बारे में एक दिन कुछ चर्चा करने की बात कही थी, स्पेशली फ्राइडे को, कि हम दो चार पांच मिनट उसके लिए रखेंगे। और कुछ दिनों तक मैंने इसे निभाया भी, हालांकि बड़े थोड़े समय के लिए निभाया और इसके बाद मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर से एक स्टूडेंट का या दो स्टूडेंट के बार बार मेल आने लगे कि सर आप उसको फिर से शुरू कीजिए, तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे जवाब देना चाहिए, स्टूडेंट को बताना चाहिए। और मैंने अपने जवाब में इसी डेली ऑडियो गाइडेंस में ये कहा था कि मैंने बंद कर दिया था, और इसके बाद चूंकि स्टूडेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने सोचा कि अब स्टूडेंट को ज्यादा जरूरत नहीं होगी इसकी, या उससे वो उतना फायदा महसूस नहीं कर रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, तो मुझे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो वक्त है वो उतना ही है और मेरे पास उस वक्त का इस्तेमाल करने के लिए दूसरे बहुत से तरीके हैं। मित्रों, इसके बाद कुछ मेल आने शुरू हुए। एक मेल कल बड़ा जोरदार आया है, मैं खासकर उसी के जेन्यूननेस की आपको बात करूंगा। उस मेल में उसमें लिखा गया है कि सर आपने इससे पहले हम लोगों को कभी ये नहीं कहा कि इसके बारे में आप मुझे बताइए कि इसे शुरू रखा जाए या नहीं रखा जाए, तो आप फिर आप कैसे इसको आप बंद कर सकते हैं या बंद कर दिया है। मतलब हुआ ये कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, राइट। इसको थोड़ा सा सोच करके देखिए मित्रों, आपके नल में पानी नहीं आता है, बंद हो जाता है, क्या करते हैं? आपके घर में से बिजली चली जाती है, आप क्या करते हैं? चलिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है कि जैसे आप रोज ट्रैवल करते हैं, आप कहीं शादी में जा रहे हैं, बस एक घंटे दो घंटे लेट आती है, कोई बात नहीं, एक दो घंटे आप लेट पहुंच जाएंगे, इंतजार कर लेते हैं बस का। लेकिन मान लीजिए कि अभी जो रविवार आ रहा है, आपको 9 बजे तक अपने एग्जामिनेशन के सेंटर पर पहुंचना है और आप घर से निकल चुके हैं 8 बजे, और एक घंटे में आपको जो बस मिलेगी उसको पकड़ करके आप एग्जामिनेशन के सेंटर पर पहुंच जाएंगे। उस दिन बस नहीं आती या बारिश होने लगती है या कुछ भी होता, अब आप क्या करेंगे? क्या उस दिन भी आप इसी तरह से बैठे रहेंगे कि ठीक है चलो एक घंटे बाद कोई बस आ जाएगी तो चले जाएंगे, या कोई ऑटो देखते हैं मिल जाएगा तो चले जाएंगे? आप क्या करेंगे? बस केवल इस पर विचार कीजिए, आप किसी न किसी हालत में सेंटर तक पहुंचेंगे, चाहे आप दौड़ लगाकर पहुंचे, चाहे किसी से लिफ्ट मांगकर पहुंचे, चाहे फोन करके किसी को बुलाएं कि भैया मुझे छोड़ करके आओ, आप कुछ न कुछ उपाय करेंगे। यूपीएससी ने तो आपको लिख करके नहीं दिया है कि अगर आपकी बस लेट आ जाए तो आप ऐसा करें, बताइए अगर उसमें लिख करके दिया होगा तो। सेंटर पहुंचना है मतलब पहुंचना है। मित्रों, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को जो यहां 15 दिन के लिए आते हैं बताने की कोशिश करता हूं कि बिटवीन द लाइन्स पढ़ना सीखिए। दो लाइनों के बीच में जो स्पेस है जहां कुछ भी नहीं लिखा गया है, आप उसमें क्या है वो पढ़ना सीखिए, उसको पढ़ना सीखिए, जबकि वहां लिखा कुछ नहीं गया है। मतलब आप अपनी तरफ से ऐड कीजिए, समझिए। और सच पूछे तो 15 दिन की क्लासेस इसी कैपेसिटी को बिल्डअप करने की एक कोशिश है और कुछ भी नहीं, अगर उसको उसके जेन्यूननेस की बात करें तो। मित्रों, शादी में जाना पहुंचना एक बात है और आपको एग्जामिनेशन के सेंटर में पहुंचना दूसरी बात है। एग्जामिनेशन के सेंटर में आप हर हालत में इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि आपके अंदर पहुंचने की जेन्यूननेस है। और ठीक है, शादी में पहुंचेंगे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे कोई बात नहीं, बता देंगे कि भाई उस दिन बस नहीं आई, यहां तक लोग कह देते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिला, कुछ भी कह देते हैं। मित्रों, इस जेन्यूननेस को समझिए। वकालत करके आप दूसरे को जिम्मेदार तो ठहरा सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, लेकिन आपका क्या होगा? क्या उस तर्क से आपका काम पूरा हो गया, आप मुक्त हो गए, आपकी जेन्यूननेस सिद्ध हो गई, आपकी पूर्ति हो गई? मान लीजिए कि मैं उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता था, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैंने मान लिया कि उसकी जरूरत नहीं। और ये तो जिंदगी के हर क्षेत्रों में होता है, परीक्षा भी ली जाती है, पूछ बताने की जरूरत नहीं होती कि आप बताइए, जिसमें डाउट होता है उसमें हम पूछ सकते हैं, आप कुछ के बारे में कह भी सकते हैं। जैसे मैं डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में तो उतना नहीं कहता, लेकिन अपने स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में हर बार यही कहता हूं कि आप मुझे इसके बारे में बताइए। उसके बारे में कितने लोग मुझे बताते हैं? चलिए मैं कह ही रहा हूं, कितने लोग मुझे बताते हैं कि इस डेली ऑडियो गाइडेंस में क्या है? ठीक है, उसने बता दिया होगा। तो मित्रों, तर्क एक ऐसी चीज होती है जो किसी को भी सिद्ध कर सकती है सही और किसी को भी सिद्ध कर सकती है गलत, लेकिन एक चीज को वो कतई सिद्ध नहीं कर सकती, याद रखिए, और वो है जेन्यूननेस। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं रियल में तैयारी कर रहे हैं, तो आप बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें प्रोवाइड कीजिए ही, हमें ये फायदा होता है, ये फायदा होता है और हमें ये नुकसान हो रहा है, और प्लीज सर आप रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट मेरे प्रति नहीं है, याद रखिए, ये रिक्वायरमेंट आपके अपने प्रति है, आपके अपने प्रिपरेशन के प्रति है, तब आपके प्रिपरेशन की जेन्यूननेस शो होती है। तो मित्रों याद रखिए कि आपकी इच्छा जेन्यूननेस नहीं है, कि आपने एक इच्छा पाल ली है तो आप बड़े जेन्यून हो गए हैं, आपने अपने स्टडी टेबल पर किताबों के ढेर लगा दिए हैं तो आप जेन्यून हो गए हैं, आप लाखों की फीस देकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ रहे हैं तो आप जेन्यून हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऊपरी साधन है, याद रखिए ये मात्र साधन है जो थोड़ी सी आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके इच्छा को जेन्यूननेस में नहीं बदल सकते। आप तर्क दे सकते हैं कि मैं और क्या करूं, सबसे बड़े जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जा रहा हूं, फीस दे रहा हूं, रोज 10-10 घंटे पढ़ रहा हूं, और मैं क्या करूं इससे ज्यादा, क्या किया जा सकता है। लेकिन मित्रों कभी उनके बारे में सोचा है कि जो ये सब कुछ भी नहीं करते और निकल जाते हैं, निकल जाते हैं मतलब सक्सेस हो जाते हैं, और आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी वहीं के वहीं हैं, कहां है फर्क? उस फर्क को समझिए। इस फर्क को समझना इसलिए अधिक जरूरी है मित्रों कि अब संडे की सुबह में ज्यादा दिन नहीं रह गया है, वहां आपको अपने उस जेन्यूननेस को सिद्ध करना होगा। और अगर मनोवैज्ञानिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर आपके दिमाग में वो पवित्रता नहीं है सब्जेक्ट के प्रति, एग्जामिनेशन के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे। लोगों को लगता है कि ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ा कम है, ज्यादा पढ़ लेते तो कंफ्यूजन कम हो जाता, और मैं बताऊं कि आप ज्यादा पढ़ लेते तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता। सवाल पढ़ाई का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपने कितने जेन्यून तरीके से पढ़ा है। जो जेन्यून तरीके से पढ़ेगा थोड़ा सा भी पढ़ के ज्यादा हासिल कर लेगा, और जो जेन्यून तरीके से नहीं पढ़ रहा है वो ज्यादा पढ़कर थोड़ा भी हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों पूरे हमारे जीवन में यही होता है, सिद्धांत भी है, पैरेटो का सिद्धांत है, मैंने आपको लोगों को इससे पहले भी बताया है कि जो 20% हमारे जो काम होते हैं हमें 80% सफलताएं दिलाती हैं, यानी कि 20% किताबें, 20% स्टडी जो आप बहुत ही जेन्यून तरीके से पढ़ते हैं आपको 80% सक्सेस दिलाती हैं। और ये 20% क्या है? ये 20% जेन्यूननेस है। आप 100 चीजें पढ़ रहे हैं उसमें केवल 20 चीजों को आप जेन्यून तरीके से पढ़ रहे हैं, 80% को नहीं पढ़ रहे हैं, उसको आप बाकी रिमेनिंग को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये जो 20% जेन्यूननेस में ही इतनी ताकत है कि वो आपको 100% सफलता, 80% सफलता दिला देती है, सोचिए आप। तो मित्रों खासकर कल मैंने जो जेन्यूननेस की बात कही थी, मुझे लगा कि चूंकि अब बहुत नजदीक है आपके एग्जाम, मैं आप लोगों को, कल तो मैंने आपको फिजिकल और मेंटल एनर्जी के बारे में बताया था कि आप अपने को फिट रखने की कोशिश करें, और आज मैंने उसमें ऐड किया है इस जेन्यूननेस को, इसको आप मेंटल एनर्जी से न जोड़ें, ये एक साइकोलॉजी की बात है, और जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें मेंटल एनर्जी भी आती है और इमोशनल एनर्जी भी आती है, राइट फ्रेंड? तो आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही। दोस्तों अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर, और आज के AIR न्यूज में भी फ्रेंड्स कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, जो दो छोटी छोटी खबरें थी मैं केवल उसकी चर्चा करके, और फिर आज का जो वक्त है मैं इस बात के लिए ले रहा हूं कि आप सबके सिविल सर्विस के एग्जाम का जो प्री का जो एग्जाम है वो बिल्कुल आपके पड़ोस में ही आ गया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक आपको अपनानी चाहिए, कौन सा सिद्धांत लेकर आपको चलना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करके अपनी सीट पर बैठने से पहले आपके दिमाग में अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर हो। आपके दिमाग में किसी तरह का कोई द्वंद ना हो कि मुझे क्या करना है कैसे शुरुआत करनी है कैसे अंत करना है। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट आपकी नीति मौजूद हो और बस जैसे ही पेपर मिले आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। मित्रों, ये मान करके चलिए कि चाहे आपकी पॉलिसी जो भी हो जैसी भी हो आप अपनी तरफ से चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं तो उसमें एड ऑन कर रहा हूं, है ना, आपको केवल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जो भी हो जैसी भी हो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो जो दो घंटे हैं 120 मिनट वो द्वंद में नहीं गुजरने चाहिए, निर्णय लेने में नहीं गुजरने चाहिए। जो आप निर्णय ले चुके हैं उनको सिर्फ इंप्लीमेंट करने में गुजरने चाहिए, राइट। जैसे कि कोई भी टीम खेल के मैदान में उतरने से पहले अपनी नीति निर्धारित कर लेती है कि उसे किस नीति के तहत खेलना होता है। तो मित्रों, जो दो तीन छोटी छोटी जो खबरें थी, एक गुजरात के चीफ मिनिस्टर की खबर आपने सुनी कि उन्होंने अपना त्यागपत्र देने के लिए कहा है, और उन्होंने हालांकि कारण दिया है कि उनकी उम्र 75 साल अभी नवंबर में ही होने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक कुछ ऐसा नियम सा बनाया है कि 75 साल से अधिक के लोगों को फिर इस तरह के सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए, तो उन्होंने ये कारण दिया है। लेकिन न्यूज में आपने सुना कि खासकर उनके यहां जो दलित आंदोलन हुआ और जो पटेल समुदाय ने जो आंदोलन किया उसको शायद वो ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए जो हाई कमान है उनसे खुश नहीं है, तो उसकी वजह से वो रिजाइन दे रही हैं। खैर, रीजन चाहे जो भी हो, पॉलिटिकल रीजन्स अलग होते हैं, बताने के अलग होते हैं, और हो सकता है दोनों ही सही हो, आपको इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो आपके सिविल सर्विस का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक बात मुझे इससे जरूर उभर कर जो चीज दिखाई दे रही है मित्रों, कि ये जो अभी जो पार्टी सत्ता में है ये उसके द्वारा निर्धारित किया गया एक अलिखित सा नियम है कि 75 ईयर से अधिक के व्यक्ति सक्रिय राजनीति से अपने को अलग कर लें। हो सकता है कि इस पर कोई सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि क्या एक पर्टिकुलर एज के बाद राजनीति छोड़ दी जानी चाहिए, या राजनीतिज्ञों की कोई उम्र नहीं होती है, या क्या युवा लोगों को ही राजनीतिक पद संभालने चाहिए। अब देखिए कि ये किस तरीके से शेप लेता है, अब वो आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन ये एक सवाल उभर रहा है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट में आप देखिए कि 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, जजेस 65 ईयर्स में हो जाते हैं, तो राजनीतिज्ञों के लिए आप 10 साल और दे दे रहे हैं 75 साल, तो इस तरह का एक सवाल मन में आता है, उसको देखेंगे। और दूसरी जो न्यूज थी फ्रेंड्स, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को लेकर के थी कि उसका जो बिल है वो कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा तो उसे पारित कर चुकी है, कांग्रेस का समर्थन मिलने की संभावना हो गई है, तो हो सकता है कि जीएसटी बिल पारित हो जाए। और आज मैं जीएसटी बिल पर आपको कुछ बहुत अच्छे न्यूज आइटम प्रोवाइड कर रहा हूं, खासकर दैनिक भास्कर का, उस दो न्यूज आइटम है और उसमें बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने जीएसटी को समझाया, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किस तरह से एक्शन में आएगा, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, टू द पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया है, तो चाहे तो आप उसे अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। और बट नेचुरल कि जब जीएसटी बिल पारित हो जाएगा तब फिर इसके ऊपर चीजें आनी शुरू होंगी, तब हम उस पर बातें करेंगे। मेन तो दोस्तों दो ही खबर थी। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स, हो सकता है कि अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं आप में से बहुत से जो मेरे प्रिय श्रोता हैं उनके लिए आवश्यक न हो, क्योंकि हर कोई आप में से संडे को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी चूंकि जो स्टूडेंट बैठेंगे वो बहुत ही सेंसिटिव समय में एंटर कर चुके हैं, तो मुझे लगा कि उनको विशेष रूप से ध्यान में रख करके मैं कुछ बातें कहूं, तो इसलिए आप लोग इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, खासकर वे लोग जिनके काम की अभी यह बात नहीं है। मित्रों, आपके पास दो घंटे का वक्त होगा, 120 मिनट का, और जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे और जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में आपको 80 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, राइट। फर्स्ट पेपर के लिए आपको पर जो क्वेश्चन आपको जो वक्त मिलेगा 1.2 मिनट, और सेकेंड पेपर के लिए मिलेगा 1.5 मिनट, 1.5 मिनट और इधर 1.25 मिनट से भी थोड़ा कम। खैर, मैं आपको अभी जो टेक्निक बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स वो सेकेंड पेपर के लिए नहीं है। सेकेंड पेपर में चूंकि कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह आते हैं तो उसकी टेक्निक थोड़ी सी दूसरी हो जाती है। मेरी इस टेक्निक को आप जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर की टेक्निक मानकर चलें, और वैसे भी सेकेंड पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर है, मैं नहीं समझता कि उसको लेकर के आपके दिमाग में ज्यादा कोई परेशानी होगी, आप उसको बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स की दृष्टि में मैं गलत हूं, लेकिन अगर ऐसा भी है तो मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर वो अपने लेवल को थोड़ा सा और अच्छा करें। फ्रेंड्स, जो जनरल स्टडीज का जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, मैं मनोविज्ञान के बारे में किसी दिन और बात करूंगा, लेकिन आपके एग्जाम से पहले ही अब आप अपने दिमाग को पर देखिए कि कितना संतुलन बना करके रख सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, आपको अपनी कॉपी में जो कुछ भी भरना है बहुत सतर्कतापूर्वक आप भर दीजिए, जो भी रोल नंबर, जो जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए हैं, और इसके बाद जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं मनोविज्ञान की बात में करूंगा, है ना, कि उस समय जो आपके दिमाग में किस तरह की चीजें उठेंगी, किस तरह का मनोविज्ञान होता है, फिर आप किस तरह का संतुलन बना करके रख सकेंगे, उसको मैं किसी और दिन या मोस्ट प्रोबेबली कल शायद मैं उस पर बात करूं, है ना। अभी मैं जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे उसका एक जो ज्यादा व्यवस्थित या वैज्ञानिक तरीका हो सकता है, ऐसा ही है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन पेपर को फ्रेंड्स आपको मुझे लगता है कि तीन राउंड में सॉल्व करना चाहिए, तीन राउंड में। पहले राउंड में जब आप सीधे क्वेश्चन पढ़ते जाइए, राइट, और क्वेश्चन पढ़ते समय आप देखेंगे कि कई अलग अलग तरह के प्रश्नों से आपका सामना होगा। अब आपको जो फर्स्ट राउंड में जो काम करना है वो सिर्फ ये कि जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं आप केवल उन्हें सॉल्व करते चले जाएं, जो बन रहे हैं, राइट, जो नहीं बन रहे हैं उनके साथ अभी माथापच्ची न करें, उनके साथ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि इसके उत्तर आपको मालूम है, भले ही थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं आपको पता लग जाता है कि यह प्रश्न आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। हां, जब आप ऑप्शन में पहुंचेंगे, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तब आप थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन यही आपके तैयारी कितनी अच्छी है उसका सच पूछे तो मूल्यांकन होगा। जैसे आप ऑप्शन में पहुंचेंगे आप सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मित्रों, फर्स्ट राउंड को आप सिर्फ इस बात के लिए रखें, सिर्फ इस बात के लिए रखें, और आप अपने को बिल्कुल विचलित न होने दें। भले ही आपके थोड़े से प्रश्न ही क्यों न बन रहे हों, आप शुरू से लेकर के आखिरी तक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर जाएं, राइट। एक काम आप यहां और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया, लेकिन जब आप 2 पर पहुंचे तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसे आप छोड़ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन की संख्या लिखी रहती है कि 2 लिखा होगा, वहां पर आप चाहें तो पेंसिल से एक हल्का सा बिंदी लगा दें, बहुत हल्का सा बिंदी, हल्की सी बिंदी लगा दें। बिंदी खासकर इसलिए ताकि जब सेकेंड राउंड में फिर आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पहले को पढ़ने की जरूरत ही ना हो। आप पहले में देख रहे हैं बिंदी नहीं लगी है, इसका मतलब है कि आप उसे सॉल्व कर चुके हैं। आप दूसरे में जाते हैं तो देखते हैं बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब है कि आपको इसे सॉल्व करना है, राइट, तो उसमें आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो मित्रों, फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करें। अब सेकेंड राउंड में अब आप केवल उनको देखें जिनके 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 2 ऑप्शन में, मतलब 4 ऑप्शन मान लीजिए उसमें दिए गए हैं, तो 2 ऑप्शंस तो आप आउटराइट रिजेक्ट करने की स्थिति में हो रहे हैं कि ये उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन जो बाकी 2 ऑप्शन हैं वो आपको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। अब इसमें आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा वक्त दीजिए, याद रखिए कि यहां सिर्फ 2 ऑप्शन है, इनसे आपको सॉल्व करना ही है, मतलब आप ये मत सोचिए कि चूंकि माइनस मार्किंग है तो आप इसे करें या ना करें, 2 ऑप्शन वाले में आपको निशान लगाना ही लगाना है, उसका मैथमेटिकल रीजन बहुत स्पष्ट है मित्रों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहां सही होने की 50% है, मतलब 50% आप गलत हो सकते हैं, 50% आप सही हो सकते हैं। अगर आप सही हो जाएंगे तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत होंगे तो देखिए मार्क्स केवल 33% ही कटेंगे, तो आप फायदे में ही रहेंगे। इस तरीके से मान करके चलिए कि आपने इसी तरह के तीन क्वेश्चन सॉल्व किए, तीन क्वेश्चन, और इन तीन क्वेश्चंस में एक सही हो गया और दो गलत हो गए, तो आपको जिस जो सही हुआ है उसमें आपको 100% मार्क्स मिल गए, जो दो गलत हुए उसमें 33 प्लस 33 इक्वल टू 66% मार्क्स कट गए और आपको मिले 100, फिर भी 33% मार्क्स का आपको फायदा हो जाएगा, है ना। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब आप सेकेंड राउंड में फ्रेंड्स केवल ऐसे को सॉल्व कीजिए जिनके दो ऑप्शन पे आपको भ्रम की स्थिति बनी हुई है, राइट। और जिसे आप सॉल्व कर ले रहे हैं, अभी आपने पेंसिल से जो हल्का सा निशान लगाया है उसे फट से मिटा दें। एक बार रब करेंगे आप रबर से तो आप देखेंगे कि वो मिट जाएगा। इसी तरह से आप पूरे पेपर को कर जाएं। इसके बाद है फ्रेंड्स थर्ड राउंड। अब ये जो थर्ड राउंड है, याद रखिए थर्ड राउंड आपके लिए ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। जो आपके अपनी कमांड में जो चीज थी वो आप कर चुके हैं, दो ऑप्शन तक को आप सॉल्व कर चुके हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसमें या तो तीन में कंफ्यूजन है या चारों में कंफ्यूजन है, राइट। तो जो चारों में कंफ्यूजन है, जो समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप कोई रिस्क मत लीजिए, कंट्रोल योरसेल्फ, आप अपने को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं और जो आपके नंबर हाथ में आए हुए हैं उनमें से कुछ को आप खो भी सकते हैं। डोंट टेक एनी चांस। स्ट्रिक्टली अपने दिमाग में यह सिद्धांत बना लीजिए कि मुझे ऐसे प्रश्नों को टच नहीं करना है। या तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहे हैं, या ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, या चारों में से चार कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो मित्रों अब जो आपके पास प्रश्न बचेंगे, दो तरह के बचेंगे, या तो तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन है या चार ऑप्शन में कंफ्यूजन है। ये थर्ड एंड लास्ट राउंड है। चार ऑप्शन में जो कंफ्यूजन है उस पर अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, उन्हें छोड़ दीजिए, बिल्कुल उनकी जरूरत नहीं है, और अपने दिमाग के संतुलन को भी बनाए रखिए। अब जो तीन ऑप्शन है जिस पे आपको कंफ्यूजन है दोस्तों, अब आपको करना यह है कि मेहनत इस बात की करनी है कि क्या ये जो तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन है मैं किसी तरीके से इसमें से एक को हटा सकता हूं। मतलब ये जो तीन ऑप्शन के कंफ्यूजन है इसको दो ऑप्शन में ला सकता हूं कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। हां, ये दो में से कोई एक हो सकता है। तो यहां आपको सही तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी है, है ना। अब आपकी जो गाड़ी है वो बैक गियर रिवर्स गियर में चल रही है, अब सही तक आपको नहीं पहुंचना है। सही तक आप पहुंचने की क्षमता होती तो आप फर्स्ट राउंड में हो चुके होते, एटलीस्ट सेकेंड राउंड में तो आप पहुंच ही चुके होते, और समय का दबाव आपके ऊपर है। तो आप सिद्धांत ये बना लीजिए कि मुझे सही आंसर नहीं ढूंढना है, मुझे सिर्फ इन तीन ऑप्शन, ये चार ऑप्शंस में से या तो तीन करने हैं इसको या दो करने हैं। अगर चार में से तीन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए, उस पर ज्यादा समय मत लगाइए। लेकिन ये जो तीन है, क्योंकि जहां तीन है वहां आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं जो थ्योरी लेकर के चल रहा हूं वो है कि जहां तीन ऑप्शन आपकी पकड़ में है उसे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे कि फिर किसी में भी आप निशान लगा देंगे और तीन में से एक भी सही हो गया या चार में से एक सही हो गया तो खाता बराबर हो जाएगा। क्योंकि चार में से एक सही हो जाएगा तो खाता बराबर हो जाएगा, क्योंकि चार में एक सही हुआ तो आपको उसको उसमें 100% नंबर मिल गए, और तीन गलत हुए तो इसमें 33 33 33 करके 99 चले गए, तो बराबर हो गया ना। तो चार में से एक तो सही होने की संभावना हो जाएगी, बशर्ते कि आप ऑप्शन तीन तक ले आए, और तीन ऑप्शन जो हैं उन्हें कोशिश कीजिए कि आप दो ऑप्शन में ले आए, और जैसे दो ऑप्शन में आते हैं बस आपका काम खत्म हो गया। अब आप एक में लाने के लिए वक्त मत लगाइए, इसमें उसमें से किसी भी एक पर जिसे आप ठीक समझते हैं, जो थोड़ा सा दिल के ज्यादा करीब है, उसको ओके कर दीजिए। और अगर आपको आप दिल भी आपके आपका साथ नहीं दे रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है आपसे, संकेत नहीं दे रहा है, तो जो ठीक लग रहा है उसे कर दीजिए, खत्म हो गई बात। क्योंकि अगर दो ऑप्शन आप ले आएंगे तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद खत्म कर दीजिए, बस बात खत्म हो गई, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। और मित्रों, समय के साथ तालमेल बनाकर चलिए, आपके कलाई पर घड़ी होनी चाहिए और आप देखिए कि कितना समय बचा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है मित्रों कि ये ज्यादा सिस्टमेटिक शायद हो सकता है। इस बात को आप कतई ना भूलें कि आपका जो टारगेट होना चाहिए 60% स्कोर का होना चाहिए और उसमें 5% आप मार्जिन दे दीजिए कि आपको तो लग रहा है कि सही है लेकिन उसमें 5% गलत भी हो सकते हैं और हो ही जाते हैं, तो आप 55% स्कोर कर लेंगे। आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए वो 55% होना ही चाहिए और यही टारगेट आपको बना करके चलना चाहिए कि मैं 60% नंबर लाऊंगा, अपने हिसाब से सॉल्व करके आऊंगा लेकिन कट पिट करके मुझे किसी भी हालत में 55% मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो मित्रों, ये मैंने आपको आपके जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर को सॉल्व करने की एक टेक्निक बताई है। आप चाहें तो अभी आपके पास 5 दिन का वक्त है, एक कोई भी अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, आप अपनी टेक्निक के हिसाब से उसे सॉल्व करिए और फिर मैंने जो बताया है आप इस टेक्निक के हिसाब से उसे सॉल्व करिए और फिर देखिए कि दोनों के स्कोर में क्या अंतर आया है। यदि मेरी टेक्निक आपको थोड़ा सा अधिक नंबर दिला सकी तो आप इसे अपनाइए और अगर आपकी अपनी टेक्निक आपको ज्यादा नंबर दिला रही है तो डेफिनेटली आप उसे ही अपनाइएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि चूंकि सर ने ये बताया है तो ऐसा मुझे करना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। मेरे पास कल एक बड़ा अच्छा ईमेल आया है फ्रेंड्स, वो सौरभ वर्मा का है। उन्होंने बताया कि अभी मैंने जो सुबह फूलों वाली एक घटना को लेकर के लाइफ मैनेजमेंट में आप लोगों से बात की थी, है ना, जमीन पर गिरे हुए फूलों को, अब मुझे सच में पूछे तो यकीन नहीं था कि इस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इस पर आप सबकी बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी और विविध किस्म की प्रतिक्रियाएं मिली हैं। मैं तो ईमानदारी से बताऊं कि मैं डर रहा था कि यार इस घटना को लेकर के मैं क्या बात करूं और इसको पता नहीं स्टूडेंट किस रूप में लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए कुछ प्रयोग किए जाने चाहिए। तो प्रयोग के तहत मैंने ये बात आप लोगों के सामने रख दी और मैं आप सबके प्रति बड़ा आभारी हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसके ऊपर आप लोगों ने इतनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि नए तरीके से चीजों को ग्रहण करने के लिए आपने अपनी दृष्टि और दिमाग खुला रखा है। सौरभ वर्मा ने जो मुझे सूचित किया है अपने ईमेल से दोस्तों, कि वो पूरे परिवार के साथ उसको सुनते हैं, फिर थोड़ी देर तक उस पर बात भी करते हैं, तो खासकर उनकी दादी को ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे लिए स्पेशली कहा है अपने सौरभ को, अपने पोते को, कि आप उनको मेरा आशीर्वाद भेजें। तो सौरभ, मैं आपसे कहता हूं कि आप दादी तक मेरा प्रणाम पहुंचा दें और उनका आशीर्वाद मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि एक पुरानी मानसिकता आप कह लीजिए इस नए तथ्यों को अगर स्वीकार कर रही है तो ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, उनका बहुत खुलापन है। और सौरभ ने ही ये सूचित किया कि उनकी जो दीदी हैं वो थोड़ी सी पुराने ख्यालात के, पूजा पाठ के मामले में थोड़ा सा इसी तरह की मान्यताओं को लेकर के चलती हैं जो अभी तक चली आ रही हैं, तो उसको बड़ी खुशी हुई कि उनके सौरभ की जो दीदी थी वो सुबह जमीन पर गिरे हुए फूलों को धो रही थी और शायद वो पूजा की तैयारी के लिए उन फूलों को धो रही हूं। तो सौरभ, तुम्हारी दीदी के इस प्रयास की मैं तहे दिल से, सच पूछे तो बहुत ही आंतरिक मन से सराहना करता हूं। और ये भी उनकी महानता है कि उन्होंने जो कुछ भी सुना वो इतनी जल्दी उसे अपने आचरण में वो ला पा रही हैं। और सच पूछे मित्र, तो यही जेन्यूननेस है। आप जब आचरण में लेकर के आते हैं, करने लगते हैं, तो उसकी जेन्यूननेस प्रमाणित होती है। तो सौरभ, इस बात की सूचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से कुछ नाम है: प्रियंका वानखेड़े, सुमित कुमार सीतामढ़ी बिहार से, अवतार सिंह, प्रशांत मवानी राजकोट से, इंद्रजीत पश्चिम चंपारण बिहार से, सोमेंद्र सिंह काशगंज से, अंकिता अग्रवाल ठाकुर द्वारा यूपी से, अभिजीत पाटिल पुणे से, नितिन छारी मुरैना मध्य प्रदेश से, अंजू सचिन सिंह लखनऊ से, अभिषेक जायसवाल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से और आलोक कुमार बिजनौर उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही अब हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।